ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाली कांग्रेस के असंतुष्ट जिलों के सभापतियों का सम्मेलन काठमांडू में हुआ शुरू। पार्टी का विधान सम्मत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर सभी ने दिया जोर। पुनर्निर्माण का बाकी काम तय समय पर ही संपन्न करने का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण को संसदीय समिति ने दिया निर्देश। चीन ने अपने बंदरगाहों को नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला। उद्योगी व्यवसायियों से बंदरगाह के जरिए आयात निर्यात करने का वाणिज्य मंत्रालय ने किया आग्रह। और ऑस्ट्रिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के 3,000 जवान तैनात। अब तक 25 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के असंतुष्ट पक्ष के जिला सभापतियों का जमघट आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुर में शुरू हुई है। जमघट में नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामंत्री डॉ शशांक कोइराला, नेतागण प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा, हृदयराम थानी लगायत की सहभागिता थी। जमघट में शामिल जिले के सभापति ने पार्टी को विधानसम्मत तरीके से आगे बढ़ने की बात पर जोर दी थी। जमघट में कल पार्टी नेतृत्व के विषय में सुझाव दिया जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा के बीच शांति प्रक्रिया के बाकी कामों को पूर्णता देने के विषय पर विचार विमर्श हुआ है। सभापति देउवा के साथ विचार विमर्श करने के लिए नेकपा के अध्यक्ष प्रचण्ड और महासचिव विष्णु प्रसाद पौड़ेल आज देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ पहुंचे थे। दो शीर्ष नेताओं के बीच समसामयिक राजनीतिक विषय पर बातचीत होने के साथ ही अध्यक्ष दाहाल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच भी विचार विमर्श हुआ था। संघीय संसद की राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति ने तय समय में ही पुनर्निर्माण के बाकी बचे कामों को पूरा करने का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण को निर्देश दिया है। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने निर्धारित मापदंड और विधि के आधार पर ही समय में ही पुनर्निर्माण के बाकी बचे कामों को पूरा करने का प्राधिकरण को निर्देश दिया। इसी तरह बैठक ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण में आए शिकायत के जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इसी तरह बैठक में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गवाली ने कहा कि बजट व्यवस्थापन के आधार पर पुनर्निर्माण के कामों को तीव्र रूप में आगे बढ़ाया गया है। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति ने कहा कि सुरक्षण मुद्रण प्रेस सिक्योरिटी प्रेस पर अधिक अध्ययन और तहकीकात करने की तैयारी में सरकार है। आज सिंह दरबार में हुई समिति के बैठक में शामिल सांसदों ने कहा कि सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापित करना देश के लिए अच्छी बात है और इससे बड़ी रकम जो हम विदेश भेजते हैं उसे बचा पाएंगे और ये एक प्राविधिक विषय है, इसलिए इस विषय पर गहरा अध्ययन करना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति में वॉलीबॉल खेल को ही राष्ट्रीय खेल की मान्यता देने के विषय पर सहमति हुई है। खेलकूद के विकास संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक के ऊपर धारागत विचार विमर्श करने के लिए आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक में मौजूदा अवस्था में वॉलीबॉल खेल को ही राष्ट्रीय खेल की मान्यता देने के विषय पर सहमति हुई। बैठक ने किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में मदिरा और सुरतीजन्य पदार्थ को प्रयोजन न रखने के विषय को सर्वसम्मत से पारित किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 3 में आज हुई प्रदेश सभा बैठक, प्रदेश की नामकरण संबंधी कार्यविधि पारित की गई। बैठक में नेकपा के मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाल ने प्रदेश नामकरण संबंधी कार्यविधि 2076 टेबल किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्य सचेतक फुयाल द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यविधि का नेपाली सचेतक राधा घले और विवेकशील नेपाली दल के नेता रमेश पौड़ेल ने समर्थन किया। प्रदेश सभा के सभामुख सानू कुमार श्रेष्ठ ने बताया गया कि प्रदेश सभा की अगली बैठक पौष 23 गते दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। प्रदेश नंबर 3 में आज से प्रदेश सभा अधिवेशन शुरू हुआ है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौड़ेल ने सभी सहभागियों से आग्रह किया कि प्रदेश की राजधानी और नाम के विषय में बिना विवाद निर्णय करें। मुख्यमंत्री पौड़ेल ने कहा कि यदि इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले पाई तो संविधान में व्यवस्था की गई अनुसार ही मतदान प्रक्रिया के जरिए निर्णय लिया जाएगा। आज दोपहर फिर से पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली नेपाल प्रवेश की है, जिस वजह से आज और कल देश की कई जगहों में आंशिक से सामान्य बदलाव आने और पश्चिम हिमालयी भूभाग में मध्यम बर्फबारी तथा पश्चिमी पहाड़ी भूभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसकी जानकारी मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी है। पूर्वानुमान महाशाखा ने बताया कि आज रात पश्चिम की कुछ स्थानों में और मध्य और पूर्वी भूभाग की कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नापी कार्यालय बीरगंज परसा में कार्यरत सर्वेक्षक राम नरेश पासवान को आज 75,000 घूस सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय हेठौरा से गई टोली ने बीरगंज के रानीघाट स्थित 2 नंबर नापी टोली के कार्यालय में आज शाम को सेवाग्राही से जमीन की नापी कर जमीन मलकियत के कागजात बना देने के एवज में 75,000 रूपये घूस लेते वक्त गिरफ्तार किया गया। लगातार की बर्फबारी से बाजुरा के मारतरी कोल्टी सड़क खंड में 3 फीट तक बर्फ जमी होने के कारण एक हफ्ते से यातायात अवरुद्ध है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को एक दूसरे स्थान पर जाने आने में काफी दिक्कत हो रही है। इसी तरह गुरुवार को हुई बर्फबारी के कारण जुमला में नेपाल टेलीकॉम के रेडियो लिंक में खराबी आने से 4 दिनों से मुगु जिला संचारविहीन है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा कि गुठी धर्म संस्कृति प्रथा परंपरा का सरकार संरक्षण करेगी। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने आज गुठी विधेयक संबंधी सरोकार वाले गुठियारों और गुठी विधेयक के विरुद्ध संघर्ष समिति के साथ हुई अंतर्क्रिया में मंत्री अर्याल ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि लोगों की इस शिकायत पर कि गुठी संस्थान गुठी का संरक्षण नहीं कर पा रहा है, सरकार ने प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने कहा कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारे को साकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कैलाली की चूरे गांव पालिका में आज कंबल बांटने के बाद मंत्री भट्ट ने कहा कि सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई पहाड़ जोड़ने वाली सड़क के विस्तार को सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने ये भी कहा कि चूरे क्षेत्र में संतरा खेती प्रवर्धन पर विशेष जोर देना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया ने जंगलों में लगी आग से जूझ रहे अग्निशमन कर्मचारियों की मदद के लिए आज सेना के 3,000 जवान भी तैनात कर दिए। देश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं नई नहीं है, लेकिन इस बार इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसकी चपेट में आकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनस्पति भी नष्ट हो गई है। देश के इतिहास में पहली बार सेना के तीनों अंगों के रिजर्व सैनिकों को राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, पुलों, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाना है। हम यह काम मिलकर अंजाम देंगे। सेना के जवान न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य सरकारों की मदद करेंगे। वे प्रभावित इलाकों से लोगों की सुरक्षित निकासी भी सुनिश्चित करेंगे। आग से प्रभावित कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। अचानक हुई बारिश से हालांकि अग्निशमन कर्मचारियों को अपनी रणनीति तैयारियों को अंजाम देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सप्ताह के अंत तक तापमान फिर बढ़ने के आसार हैं। अब मौसम। अगले 24 घण्टों में काठमाण्डु घाटी का अधिकतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमाण्डु घाटी का अधिकतम तापमान 16.3 और न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस के असन्तुष्ट जिलों के सभापतियों का सम्मेलन काठमाण्डु में हुआ शुरू। पार्टी का विधानसम्मत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर सभी ने दिया जोर। पुनर्निर्माण का बाकी काम तय समय पर ही सम्पन्न करने का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण को संसदीय समिति ने दिया निर्देश। चीन ने अपने बंदरगाहों को नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला। उद्योगी व्यवसायियों से बंदरगाह के जरिए आयात निर्यात करने का वाणिज्य मंत्रालय ने किया आग्रह। और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के 3,000 जवान तैनात। अब तक 25 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।